لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على عداهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے، جو یہ اوپن بھی آیت پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے مکر کرا تو خدا نے بھی تدبیر کری، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اس کا ترجمہ ہے. ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی آیت بھی ہے کہ یہود نے ان کے قتل کرنے کے لیے مکر کیا تھا، تو خدا نے بھی چال چلی، تدبیر کری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تدبیر کا ذکر اگلی آیت میں، تدبیر کیا ہوئی وہ اگلی آیت میں ذکر ہے. لیکن بہرحال اگر مومن کے خلاف چال چلی جاتی تو خدا کی تدبیر مومن کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح کی آیتیں رسول اکرم کے لیے بھی آئی ہیں قرآن حکیم میں کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ مکر کرا تو خدا نے بھی تدبیر کری، اور ہم نے رسول کی زندگی میں دیکھا کس طرح سے مکر کیا گیا. لیکن قرآن کو صرف رسول اکرم کی زندگی تک نہ رکھا جائے، آج کل کی بھی حالت کو دیکھا جائے کہ جس طرح سے انقلاب اسلامی کے خلاف دنیا نے مکر کرا، تو خدا کی تدبیر آپ دیکھ لیں. اسی طرح ایک مومن کی زندگی میں بھی، اگر مومن کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے کہ میرے زندگی میں اگر کسی نے مکر کرا ہے وہ میں خدا، اور میں اگر متقی ہوں تو خدا میرے لیے ضرور تدبیر پیدا کرے گا. درود پڑھ دی جائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافی کا الیہ و متحرک من الذین کفروا و جعل الذین تبعوا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری بات بتائی ہے، اور اس آیت کو ہم سنجیدگی سے پڑھیں گے، دھیرے دھیرے پڑھیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ مشکل کی آیت ہے، اور میزان کو سامنے لے کے آئیں گے اور بحث کری جائے گی انشاءاللہ. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، جب خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف لے لوں گا. متوفی کا اتوفی سے متوفی بنا ہے. اتوفی کسی کو کہتے ہیں جس کو کسی کو پورا لے لیں، اس کو کہتے ہیں اتوفی. اب یہ سے کہ سورہ زمر کی آیت ہے، یہ سمجھانے کو کیا ہوتا کیا متوفی. سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ یتوفل انفس حین موتیہ والتی لم تمت فی منامیہ. یہ اس میں کیا کہ خدا لوگوں کی مرنے کے وقت ان کی روحیں لے لیتا ہے، اور جو لوگ نہیں مرے ان کو نیند میں لے لیتا ہے. تو دو طرح سے نہ لے لیا روح کو، موت کے وقت بھی لے لیا، اور سوتے وقت بھی روح لے لیتا اللہ، لیکن جو سوتے ہیں ان کی صبح میں واپس روح آ جاتی ہے، مطلب لے لیتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں سمجھانے کے لیے آیت پڑھی میں نے، ہوتا کیا اتوفی ہوتا کیا، کسی کو لے لینا اپنے پاس رکھ لینا. تو عیسیٰ کے لیے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف لے لوں گا. آیت آگے چلی، بحث چل رہی ہے. اب وہ لے لوں گا، تو یہ لے لینا موت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن صرف موت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رکھ لینے کے لیے بھی ہوتا ہے، پورا پورا لے لوں گا. تو तफसीर नूर जो है या आयतुल ईमानी की, इसके हिसाब से सारे मुसलमान इस बात पे इत्तेफा करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने ईसा को ज़िंदा आसमान पे ले लिया, लेके रख लिया और वहाँ ज़िंदा वापस आएंगे। मीज़ान ने भी इसी तरह से बात करी है, मीज़ान ने भी इसी तरह से बात गुफ्तगू करी है, लेकिन मीज़ान ने एक, अब मैं बताता हूँ सफ़ा नंबर, ये कौन सी मीज़ान है सबको दिखाने के लिए, ये मीज़ान का इंग्लिश वॉल्यूम, छठा वॉल्यूम, पेज नंबर 51, 51 पेज नंबर है, इधर लिखा गया मोमिन को। और ये जो अली कुली कुराई का कुरान है, ये भी बड़ा ऑथेंटिक है, और ताकि मोमिन समझे, और इसमें भी बात दर्ज की गई ये हदीस। अब ये हदीस क्या है जो मैं बता रहा हूँ इतने सब तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं कहाँ से कह रहा हूँ। ये हदीस में आठवें इमाम फरमाते हैं, इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम दुरूद पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, किसी नबी के बारे में इतने इख्तलाफ नहीं हुए जितने कि ईसा अलैहि सलाम के बारे में हुए। और ये है कि उनको जिंदा जमीन से उठाया गया था, फिर उनको मौत दी गई थी जमीन और आसमान के बीच में, और फिर उनको आसमान पर उठाया था। इस बात को अली कुली कुराई ने, ये जो किताब है इसमें उन्होंने भी ज़्यादा तफसीर लिखते नहीं, लेकिन उन्होंने नीचे लिखा है यही हदीस दर्ज की, लेकिन उसमें उन्होंने ऐड करा है जो बात मोमिन को समझाने के लिए, कि फिर जब आसमान में गया था तो उनकी रूह वापस आ गई थी, जब आसमान जब पहुँचे ऊपर तो फिर उनकी रूह वापस दाखिल हो गई, तो ली थी उन्होंने, एक्सप्लेन करा उस हदीस को, लेकिन वापस रूह दाखिल हो गई, ताकि मोमिन को समझ में आ गया होता क्या, अतवी होता क्या है, ले लेना, लेकिन फिर वो आ गई। तो छठे इमाम ने फरमाया दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, कि जब वो जन्नत में पहुँचे, आसमान में पहुँचे, तो जो उनकी आबा थी, ऊन की आबा थी, बीबी मरियम ने बुनी थी और बीबी मरियम ने उसको सी थी, तो जब वो पहुँचे तो कहा गया कि दुनिया की जीनत को उतार दो ऐसा। ये छठे इमाम की हदीस है, दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो ये मैंने डिटेल बताया मोमिन को समझाने, क्योंकि हर चीज़ बताना चाहिए जो जैसा जो है इल्म जाना। इस कालल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वो राफ़िया इले का, वो मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा, वो राफ़िया इले का मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा। अब ये क्या है, तो मीज़ा ने बहस करी कि राफ़िया इले का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे तरफ उठा लूँगा, अल्लाह कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि उसकी तरफ उठ जाएंगे भाई, कोई अल्लाह कोई को बैठा हुआ है कहीं वहाँ तक उड़ जाएंगे क्या? तो इसका मतलब है कि उनका स्पिरिचुअल, उनकी जो रूहानी तहारत को और बुलंद करेगा अल्लाह, उनकी तहारत को और एक एक दलील ये दी मीज़ान ने कि रूहानी तहारत को और ज़्यादा बुलंद करेगा, राफी और इलेगा मेरी तरफ, मैं तुझे और बुलंदी दूंगा ईसा। और एक और उन्होंने तफसीर करी है उसमें, वही है कि इसका मतलब ये, उसको आसान तफसीर करिए कि उनके बदन को उनकी रूह को मिला के जिंदा उठा के मैं अपनी जन्नत में ले जाऊंगा जहाँ फरिश्ते रहते हैं, और मैं तुझे वहाँ रखूँगा। तो दोनों तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया है। एक दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व राफी इले का, वो मुतहर का मिन लदीना कफरू, वो मैं तुमको काफिर के सोबत से पाक कर दूंगा। वो मुतहर का मिन लदीना कफरू, मैं तुम्हें काफिरों को सोबत से पाक कर दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं काफिरों को बीच में से तुम्हें उठा लूंगा, तुम्हारा जो 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 गंदा माहौल है उससे मैं तुम्हें दूर कर दूंगा। वो जायलुल्लदीना तबो फोकल्लदीना कफरू इला योमिल कियामा, वो जिन लोगों ने तुम्हारी इत्तेबा करी उनको काफिरों के मुकाबले में कयामत तक के लिए गालिब कर दूंगा। ये जो हिस्सा जो आयत का है इसमें अपनी बहस है, ये बहस थोड़ी लंबी है। मीज़ान में एक दुरूद पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये अब इस आयत का तर्जुमा समझें आप, कि जिन लोगों ने तुम्हारी इत्तेबा करी उनको मैं काफिर के मुकाबले में कयामत तक गालिब रखूंगा। अभी बहस है, अब इत्तेबा किसने करी थी, बहस ये कौन इत्तेबा करने वाले थे, तो अगर देखा जाए, मीज़ान ने ये कहा है कि इत्तेबा उन लोगों ने करी जो ईसा को सही में ईसा माने, ट्रिनिटी के बीच में नहीं पड़े हुए थे ना इत्तेबा करने वाले, और कौन थे इत्तेबा करने वाले? उसके पीछे जो मुसलमान आए वो भी ईसा की इत्तेबा करने वाले ना, हकीकत में यही इत्तेबा करने वाले लोग हैं ना दर हकीकत। लेकिन अब इनका नंबर तो छोटा सा है ना, वो तो थोड़े से ईसाई रहेगा जो उन्होंने सही में इत्तेबा करी थी, थोड़े से ही देगा ना। वो मुसलमान भी इतने तो नहीं है कि पूरे सब सब पे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना मुसलमान, नहीं है ना सर। अभी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ का आलिबा है? तो अगर नंबर देखा है तो इनका नंबर छोटा है, इनका नंबर छोटा नंबर है जिन्होंने इत्तेबा करी है। तो एक बहस ये कि इसका मतलब ये है कि जो आइडियोलॉजी है वो गालिब आ गई क्या? क्या वो आइडियोलॉजी गालिब आ गई? जो अगर नंबर को नहीं लिया आया तो क्या आइडियोलॉजी गालिब, गालिब क्या आया? बहस ही है ना, समझे समझने की बात है, गालिब क्या आया? या आयत बड़ी मशहूर आयत है, तो गालिब क्या आया? तो कहा कि मीज़ान ने इसका जवाब दिया है, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है जो आगे की आयतों में जवाब जाहिर होगा। इसी मीज़ान ने मज़ा ना बताया इसको क्या मतलब है इसका, अल्लाह ताला अल्लामा तबा तबाही के दर्जात पे चार चांद लगा। मीज़ान ने कहा कि इसका मत कैसे उनको वो कैसे गालिब आ गए, हालांकि वो जो थे असली ईसाई वो तो कम ही रह गए, बाकी मुसलमान चंद गालिब कैसे आ गए भाई? तो उसका जवाब ये है, जवाब इस तरीके से दिया है कि जब अल्लाह ताला ने यहूद को कहा, जब आयत आई थी कुरान हकीम यहूद के बारे में, तो अल्लाह ने यहूद को बुरा कहा था ना कि तुमने ये करा मूसा साथ, तुमने ये करा मूसा के साथ, हालांकि उनके बाप दादा ने किया था। तो अल्लाह ताला ने उन यहूद को क्या बताया कि तुमने ऐसा करा? इसका मतलब ये कुछ चंद लोग जब कुछ करते हैं तो पूरे नेशन को अल्लाह एड्रेस करता है। उसका जवाब ये है, बहस गहरी है, चंद लोग जो करते हैं तो उसको अल्लाह पूरे नेशन को वही बात कह देता है। इसी तरह तबाऊ के अंदर जिन्होंने ईसा की तबाऊ इत्तेबा करी, हालांकि वो जो खालिस ईसाई थे वो तो चंद थे तो वो चंद, लेकिन इस आयत में अल्लाह ने सबको जोड़ लिया कि सारे ईसाइयों ने इत्तेबा करी ईसा की, और सारे ईसाइयों ने इत्तेबा करी ईसा की, हालांकि करी चंद ने। आगे आयतों में बात क्लियर हो जाएगी, ध्यान देना, जो थोड़ों ने इत्तेबा करी अल्लाह ने पूरे नेशन को कह दिया तुम सब ने इत्तेबा करी ईसा की। अब समझ में आई यार कि तुम सब ने भी इत्तेबा करी ईसा की और मुसलमानों ने भी इत्तेबा करी। हाँ, अब अगर पूरे मुसलमानों को ले लिया जाए और सारे क्रिश्चियन ले जाए यहूद के मुकाबले में, तो ये भी डोमिनेट कर रहे हैं। अब आया समझ में आई? मीज़ान ने इसका सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन जो एक्सोजेनस ये है कि हालांकि थे तो चंद खालिस, लेकिन सबको लाने ले लिया उसमें, उस जुमरे में सबको लगा हाँ तुम लोग कयामत तक इंतकाल, और वाकई में कयामत तक गालिब है अगर ईसाइयों को और मुसलमानों को ले लिया जाए इनके खिलाफ यहूद के खिलाफ, तो गालिब है। एक दुरूद पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल। सुम्मा इलैया मर्जेकुम फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फी तख्तलिफून। फिर तुम सब मेरी तरफ आगाह चल रही है, सुम्मा इलैया मर्जेकुम, फिर तुम सब मेरी तरफ लौट के आओगे। अल्लाह कह रहा है, अभी तो अल्लाह ने बात कह दी, अब आगे कह रहा है सुम्मा इलैया मर्जेकुम फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फी तख्तलिफून, फिर तुम सब मेरी तरफ लौट के आओगे, फिर तुम जिन जिन बातों में इख्तलाफ करते थे मैं उसमें फैसला कर दूंगा। दुरूद पढ़ रहे اللهم صل على محمد وعلى محمد فاما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين। तो जो लोग उन्हें उनमें से कुफ्र करा, मैं उनको दुनिया और आखिरत में दोनों में अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो ये क्या, ये काफिर कौन थे? ये काफिर यहूद थे। अब इस आयत में वो आयत वही चल रही है, आयत में देखते रहे आप, इसमें कौन थे कफरू? अमल लजीना कफरू, जो लोग उनमें काफिर थे मैं उनको अजाब दूंगा दुनिया में भी आखिरत में, उनका कोई मददगार नहीं होगा। तो इस आयत में मुराद यहूद है। अब आप देख ले आयत के हिसाब से कि मैं दुनिया में भी अजाब दूंगा आखिरत में दूंगा, दुनिया में क्या अजाब दिया? यहूद को अजाब कितना मिला है, हर जगह जलील होते हैं। क्रिश्चियन ने करा जलील उनको, यहां से निकाल दिया, वहां से निकाल दिया, हिटलर ने मारा, सब हुआ ना, चारों तरफ जलील हुए, अल्लाह ने अजाब दिया। फिर दुनिया वाला आखिरत वमा लहुम मिन, और आखिरत में भी अजाब है क्योंकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया। अब आगे की आयत में बात और क्लियर हो जाएगी, जो मैं पहले से कह रहा था कि आप ध्यान दें। وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اب آیت کلیئر ہوتی ہے، درود پڑھ دیں آپ، اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد. اب اللہ بتا رہا ہے، ایک تو میں نے آقا تھا کہ اللہ نے کیا تھا جنرل نیشن، اور ایک تھا اس میں چند مومنین. جنرل نیشن کو اللہ نے کہا تھا کہ تم سب غالب ہو گئے ہو، تم غالب کروں گا. اب اللہ نے جنت کی بات کری، اب ٹون بدل گیا ہے. توجہ دے، یہ میزانی خوبصورتی ہے. کہا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرے میں ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. واللہ لا يحب الظالمین، خدا ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اب اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے تھے جو جنرل نیشن تھا تباہو کا، اس کو غالب تو کرا لیکن جنت میں کس کو دوں گا، جنت میں کس کو دوں گا؟ اس میں اللہ نے پھر رول چینج کر دیا. اللہ نے کہا کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے ان کو میں پورا پورا بدلہ دوں گا. میزان نے بہت خوبصورت بات کہی. کیا کہا؟ زیادہ تر یہ ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتا تو بعد میں اللہ اپنے وہ اسما لاتا جو کہ رحمانیت کے ہوتے ہیں، واللہ غفور الرحیم. اس طرح سے کیوں نہیں آئے، بلکہ اللہ نے یوں کہا، یوں کیوں کہا کہ واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس جنرل نیشن کو ایڈریس پھر کرا ہے کہ تم لوگ ظالمین ہو، حالانکہ مانتے تم ظاہر میں عیسیٰ کو تھے لیکن تم نے مان لی ٹرینیٹی. تو تم میں سے تم لوگ ظالمین ہو، لیکن ان میں سے جو تم چند مخصوص جو لوگ ہیں، وہ عمل لذین عامن عمل صالحات ہے فیوفیہم اجورہم، اس میں جو خالص جو لوگ ہیں ان کو میں اجر دوں گا. اور اس طریقے سے اللہ نے بات کو سمجھایا ہے. درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد. ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ کہتا آگے کہ یہ ہم آیتیں ہیں جو تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ پور حکمت ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کے دل کو فوقیت ایک طرح سے قلب پہ اللہ نے ظاہر کرا کہ یہ ہم اپنی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. ذالک نتلو علیک من الآیات و ذکر الحکیم. اللہ اب آپ سن لیں، آپ اس پہ روحانی چلے جائیں. ذالک نتلو علیک، ہم تم کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ تعریف ہی سمجھے گا اللہ. ذالک نتلو علیک، ہم تم کے رسول تم کو بڑا سنا رہے ہیں. وہ ذکر علیک من الآیات و ذکر الحکیم. جب اللہ تعالیٰ رسول کو بڑے سناتا ہے تو مومن بھی سنتے ہیں، مومن قلب پہ اللہ آ جاتا ہے. وہ اللہ صرف رسول کو ہی نہیں سناتا ہے، جو عارفین ہیں اور عابدین سب کو سناتا ہے، سب بیٹھ جاتا رسول کے پیچھے، عرفان میں سب بیٹھ جاتا. ذالک نتلو علیک من الآیات و درود پڑھ دیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک نتلو علیک من الآیات، جو عارف ہوگا یہ آیت سن کے روئے گا. ذالک نتلو، ہم پڑھ کے سنا لے گا، من الآیات و ذکر الحکیم. کیا ہے قرآن حکیم؟ خود ذکر الحکیم ہے، پور حکمت ذکر قرآن حکیم ہے. میزان نے کیا کہا؟ ذکر الحکیم کیا ہے؟ پور حکمت ذکر قرآن حکیم ہے. تو آیات بھی خدا قرآن ہے اور ذکر الحکیم بھی خدا قرآن حکیم ہے. درود پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ ان کو مٹی سے خلق کرا، کہ ان کو مٹی سے خلق کرا پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. یہ جو آیتیں آ رہی ہیں، اب یہ آیت نزل کیا، یہ آیت آ کب رہی ہیں ابھی بتا دوں. درود پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیتیں جب آئی تھی؟ جبکہ نجران کے عیسائی آئے تھے رسول اکرم کے پاس، اور وہ پورا بشپ بھی آئے تھے، سب آئے تھے، اور وہ سب بحث کرنے آئے تھے رسول اکرم سے کہ دین حق پہ آپ ہیں کہ ہمیں. تو رسول اکرم سمجھانے لگے تو اسی سمجھانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیتیں بھیجی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت بھی بھیجی کہ بے شک خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، کیونکہ مٹی سے پیدا کرا پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. کیونکہ انہوں نے بحث کری تھی نا کہ ہم عیسیٰ کو بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بحث یہی تھی نا ان کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگا کہ कि अगर तो अल्लाह सुब्हान ने फरमाया कि ईसा की मिसाल आदम की सी है, कि आगे कुन फयकून की मंजिल पे वो भी थे, वो कुन फयकून की मंजिल ये भी था। इससे पहले ही गुज़िश्ता मंजिल अपन पढ़ चुके कि इनको कुन फयकून से बनाया ना, कि हो जाओ हो गए, कहा कि ये भी ऐसे हो गए, हो जाए तो हो गए, जो अल्लाह चाहता है वो हो जाता है। कहा कि उनको तो बगैर माँ और बाप दोनों के पैदा कर रहा था। तो ये जो दलील है अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में भेजी और ईसाइयों को रसूल अकरम ने पढ़ के सुनाया कि देखो ये बात साफ है। अल हक मिन रब्बी का फला तकुम मिन अल मुमतरीन, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है तो तुम हरगिज शक करने वाले मत होना। मीज़ा ने कहा अल हक मिन रब्बी का, ये खुद तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है। इसमें खूबसूरती है मिर रब्बे का, ये हक कहां से आया है? अल्लाह की तरफ से हक शुरू हुआ है, मिर रब्बे का मिर हक कहां से शुरू, अल्लाह ने ये दलील दी अल्लाह सुब्हान तआला ने, उसके बाद क्या अल हक मिर रब्बे का, ये हक खुदा की तरफ। फला तकुम मिनल मुमतर, तुम शक करने वालों में ना हो जाना। तो ये किसको कहा है? अल्लाह सुब्हान तआला ने सरकार को कहा है, सरकार को कहा है, ताकि सरकार, हालांकि सरकार तो मदीदत इल्म है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह अल्लाह सरकार 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 को कहा है, ताकि सरकार हम सबको बताएं, सारे मुसलमानों को बताएं, अल हक मिन रब्बे का फला तकुम, तो तुम हरगिज शक करने वाले में ना होना। तो इसमें किस तरह से अल्लाह ने कहा है, एक तो ये अल हक मिन रब्बे का मैं फला तकुम, उसमें दो चीज़ें हैं, मीज़ा ने दो कहा दो चीज़ें, एक तो ये कि एक तो क्या खुदा खुद वही कर रहा है मेरी तरफ से हक है, दूसरा अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने दलील दी है। एक बेईमान इंसान भी दलील से को कबूल कर ले कि भाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए और उनको खुदा का बेटा न कहा गया, तो फिर तुम ईसा के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो? आज भी मैं जब ईसाइयों से बात करता हूँ ना इस बारे में, आप भी आजमा के देख लें, मैं तो ईसाई मुल्क में ही रहता हूँ, आप उनसे कहें ये बात, ये यही बोले, यही कहें आप कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के तो माँ बाप तो नहीं थे, आप क्यों नहीं उनको बेटा कहते? कोई जवाब नहीं है। आज पूरी ज़िंदगी मैंने निकाल दिया ईसाई मुल्क में, आज तक सा जवाब नहीं मिला मुझे, क्योंकि ये दलील ऐसी है कि अगर आप मुसलमान हो या ईसाई हो, एक इंसान तो हो ना, मंतिक तो रखते हो ना, अकल तो रखते हो ना, इसमें के लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसमें भाई, जब दोनों नहीं थे उनके तो क्यों नहीं उनको बेटा कहा? ये अल्लाह सुब्हान अल्लाह कह रहा है हक मेरा भी फलाता हूँ, मेरा मुंतर हक है, इसमें इसमें कन्फ्यूजन का आएगा। फिर दुरूद पढ़ रहे فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ये आयत आ गई है, फेमस आयत, मुबाहला की आयत। अब जब ये सब हुआ, ये जो पूरा जब आया ग्रुप आया और उन्होंने बहस करना बंद नहीं करी, तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने मोबाइल की आयत नाजिल कर दी, फमन हाज जगह फी ही मिम्बादी, क्या कहे इसके बाद भी ये तुमसे हुज्जत करते रहे, फी ही मतलब किसके बारे में? ईसा के बारे में, मत मिम्बादी माजा का मैंने इल्म, इल्म आने के बाद भी अगर तुमसे इसके बारे में ये हुज्जत करते रहे, कहा फकुल तालो नदऊ, कहा कहो कि आओ हम अपने नदऊ बुलाएं अबना ना बेटों को, हमारे बेटों को अबनाकुम तुम्हारे बेटों को, निशाना व निशाकुम हमारी औरतों को तुम्हारी औरतों को, अनफुसना व अनफुसकुम हम खुद भी और तुम खुद भी, सुम्मा नबताहिल क्या, फिर हम गिड़गिड़ा के दुआ करें, आजिज़ से दुआ करें, सुम्मा नबताहिल फनजाल लानत अल्लाह अलल काज़बीन, और झूठों पर खुदा की लानत भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान, ये आयत हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, मशहूर आयत है, वो सुन्नी शिया तफासिर में सब लोग इस बात से इत्तेफाक कर देंगे, जब ये आयत आई तो रसूल अकरम ने अपने अपने साथ बीबी को लिया, निशान में बीवी आई और अपना में हसनैन आए और अन हो सकूँ मैं वो और मौला मुत्तकियां दोनों आए। हमको ये आयत मालूम है, एक दो एक दुरूद पढ़ दे।
मोहम्मद
मोहम्मद। तो ये जो वाक़ हुआ था 10 हिजरी में हुआ था, और ये जगह जहाँ पर ये मुबाला हुआ था, ये सरकार जहाँ दफन है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जगह थी जहाँ पर अब मस्जिद बनी, इसका नाम है मस्जिद अल इजाबा। उस जगह पर जब मुबाला हुआ उस मस्जिद बनी हुई है, उसका नाम है मस्जिद उल इजाबा, जहाँ पर मुबाला हुआ था। तो इसको काट देना सब, है ना, इसको काट देना है जब पेज पर। तो साहब, तो ये जब आयत नाजिल हुई तो आयत में आया तो क्या था इसमें, पहले आया अबनाना, बेटे का, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने बेटे अजीज होते हैं, इसलिए अबनाना। फिर उसके बाद अनफजकुम आया। अब इसमें देखेंगे जितनी भी आए हैं, बेटे कहा है, बेटा नहीं कहा है, तो बेटे में दो ले क्या सरकार। फिर औरत आया, औरत नहीं आया, हालांकि इतनी औरत निशान आया, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने जब कहा तो था औरतें लेके आओ, और सरकार सिर्फ अपनी बेटी को लेके आए, मुसलमान गवाह। और खुद में सरकार खुद भी आए और मौला मुत्तकियान को लेके आए। ये सब लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं, सिर्फ इतने आए। तो इसका जवाब ये है कि हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहे तो सबका कहा था, लेकिन सिर्फ इतने लोग आए, इसका मतलब ये कि यही पंजे तंत्र है जो इस बात के मुस्ताहिक है कि इस आयत में शामिल होते हैं। जी हाँ, यही इसके मुस्ताहिक थे। मीज़ान ने कहा कि जब ये इस मिशन पे गए थे, मुबाला के मिशन पे गए थे, तो ये सब लोग शरीक थे आपस में इस मिशन में, सब मुत्तहिद शरीक थे, कि उस सब पे लानत पड़ने वाली थी, एक ग्रोह पे लानत पड़ने वाली थी। तो ये लोग अपने मिशन में सब शरीक थे, शिरकत कर रहे थे। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या था, सबको लेके आ जाओ औरतों को, एक आए खुद में सरकार भी आए और मौला मुत्तकियान भी आए। मामून ने पूछा था 8वें इमाम से, दुरूद पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला मुत्तकियान की खिलाफत की दलील बताएं, मौला मुत्तकियान की खिलाफत की दलील बताएं। तो कहा ये आयत है, अनफुसना व अनफसकुम, हम खुद भी आए, कहा अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि तुम खुद को लेके आओ, तो अनफसकुम अनफुसना में सरकार से मौला को लेके आए, अनफुसना में आए ना, खुद कहा है, खुद का नस बताया है ना। ये दलील आसान दलील है कुरान से कि खिलाफत उनको क्यों मिलना थी, जो कुरान सीधे सीधा बता रहा है ना, इसमें कन्फ्यूजन क्या आ गया है, अनफुसना में आ गए ना, तो यही उनकी खिलाफत की दलील है। कुरान आसान करता है ना बात को, दुरुस्त पड़ता है। तो जब ये सब लोग आए पंजीतन, जब आए तो तमाम रिवायतों में है कि जब ये लोग आए मैदान में, तो सरकार ने सबके सामने कहा कि या परवरदिगार आलम, ये मेरे अहले बैत है। अब ये अहले बैत मुसलमान बहस करते ना, अहले बैत कौन है, ये है, वो है, बीबियां हैं। जब जब औरतें कहीं गई तो सरकार कोई अपनी बीवी लेके नहीं आए, हालांकि बीबियां घर में बैठी भी थी, बैठी थी ना। अब अहले बैत की बहस होती है ना, अहले बैत कौन है, तो उस दिन सरकार ने दिखा दिया, अल्लाह दिखाना चाह रहा था कि देखो अहले बैत खुल के सामने आ गए। किसी ने नहीं कहा कि किसी ने, किसी रिवायत ने नहीं कहा सुन्नी शिया में कि उनकी बीवियों में से कोई आया। ये दलील है, अहले बैत की शान की दलील है। वो जिस शान से आए कि इमाम हुसैन गोद में थे, इमाम हुसैन गोद में थे, इमाम हसन सरकार की उंगली पकड़े हुए थे, बीच में बीबी थी, पीछे वो मुत्तकियान थे। इस तरीके से पर्दे का इंतज़ाम किया गया था, इस तरीके से पर्दे का इंतज़ाम किया गया था। और जब इन्होंने देखा, ईसाइयों के सरदार ने देखा कि जिस तरीके से ये आए हैं, कहा कि देखो इनके चेहरे देख के दिखता है कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ हट जाएगा, तो कहा कि हम आपसे मुबारा नहीं करना चाहते। तो सरकार ने कहा इस्लाम लिया, कहा हम इस्लाम तो नहीं लाएंगे। तो कहा सरकार ने कहा फिर मैं तुमसे जंग करता हूँ। तो कहा नहीं, आप जंग नहीं करें, हम आपको हम हर हर साल तोहफा दे दिया करा करेंगे। तो इस पर फैसला हुआ था तोहफा दे दिया करना, पूरा डिटेल है उसका। तो सरकार ने कहा कि अगर ये लोग मुझसे मुबायला कर लेते तो नजरान पूरा अल्लाह आग से भर देता, पूरा नजरान, और इनको बंदर और सूअर बना देता, और साल भर नहीं गुजरता मगर पूरे ईसाई दुनिया के हलाक हो जाते। जी हाँ, ये अहले बैत को झुठलाने का नतीजा ये होता। स्पिरिचुअल मिशन में अहले बैत आया है, झूठों पर खुदा की लानत भेजे। इन्ना हाजा लहुल कससुल हक व मामिन इलाहिन इल्लल्ला व इन्ना अल्लाह लहुल अजीजुल हकीम। इन्ना हाजा, बेशक ये लहुल कससुल हक। अब इसमें मीजान ने कहा इन्ना होता है बेशक के लिए, हाजा ये लहुल, ल फिर आता है बेशक के लिए, हुआ मतलब फिर ये, बार बार अल्लाह ने कहा इन्ना हाजा लहुल कससुल हक, ये सच्चा किस्सा है। अल्लाह ने कहा वो वाले के उससे कहो कि ये जो हुआ है वो जो मैंने जो ईसा के बारे में बताया, इन्ना हाजा लहुल कसल वमा, फिर अल्लाह ने खुदा अपनी शान बताई, वमा मिन इलाहिन इल्लल्ला, तुम्हारा कोई खुदा नहीं मगर खुदा के, वह लहुल अजीजुल हकीम। फिर अल्लाह आया कहा कि और बेशक खुदा वो है जो अजीज़ुल हकीम है, गालिब भी और दाना भी है। यह खूबसूरती कुरान हकीम की, फ़इन तवल्लो, अगर ये पलट जाए, फ़इन अल्लाह अलीमुम बिल मुफसदीन, कि अगर ये लोग पलट जाए तो खुदा फसाद करने वालों से वाकिफ़ है। फ़इन अल्लाह अलीमुम बिल मुफसदीन। तो कौन पलटे थे? पलटे कौन थे? पलटे ये थे ईसाई, पलट गए थे ना। क्यों पलटे थे? सरकार ने समझाया कि ये लोग पलटे इसलिए हैं कि इनको सलीब की मोहब्बत प्यारी हो गई, और शराब की मोहब्बत और सूअर खाने की मोहब्बत से पलट गए पीछे। ये मेरी बात नहीं सुने, ये मेरी बात नहीं सुने, सलीब की मोहब्बत में इस तरह से पलटा जाता है। जब ईसा अलैहिस्सलाम जिस रात को जा रहे थे दुनिया से उठाए गए थे, तो उनके चेले पास से बैठे हुए थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज की रात को मैं उठा लिया जाऊंगा। तो कहा कि एक तुम में सा वो होगा जो मुझे 12 बार झुठलाएगा सुबह। तो उसमें एक बोला नहीं, पहले कहा कि एक वो होगा जो कि मेरी सूरत का बन के शहीद होगा, उसका दर्जा मेरे साथ होगा। तो एक ने कहा क्या वो मैं होऊंगा? तो कहा अगर तेरे दिल को कहा तो तू ही होगा। और कहा कि एक वो होगा जो मैं 12 बार झुठलाएगा। तो कहा दूसरे ने कहा क्या मैं होऊंगा? कहा कि तेरे दिल को यही एहसास हो रहा है तू होगा, कहा फिर तू ही झुठलाएगा। फिर कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि तुम 3 फिरके हो जाओगे, 2 जहन्नम में जाओगे और 1 जन्नत में जाओ, जो शमून की इत्तेबा करेगा वो जन्नत जाएगा, बाकी तुम जहन्नम चले जाओगे। हालांकि इतने बड़े थे उनके असहाब, उसमें 2 फिरके जहन्नम में चले गए, 2 फिरके जहन्नम में चले गए। और वही हुआ कि जिसने कहा था कि मेरे दिल में, उसने 12 बार झुठलाया, 12 बार झुठलाया जब यहूद ने पकड़ा। और जिसने कहा था कि मैं क्या हो सकता हूँ जो शहीद हूँ, तो उसी को उसकी सूरत ईसा की मालूम हुई, उसको शहीद किया गया। इस तरीके से आजमाइश होती है। इसी तरीके से क्या क्या करबला में क्या हुआ, जबकि रसूल अकरम ने कहा था मैं तुम्हारे बीच में किताब और अपनी अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, तो लोगों ने इसी तरीके से पलटे जैसे ईसा के साथ पलट गए थे, उसी तरह पलटे, उसी तरह पलटे। और जिस तरह मुबाहला हुआ था, और क्या मुबाहले में क्या हुआ था, मुकाबला हुआ था ना, मुकाबला हुआ था ईसाइयों से, मुसलमान का मुकाबला हुआ था। हाय करबला का मंजर, उस करबला के मंजर के अंदर उन पांच में से चार दुनिया से जा चुके थे, वो छोटे साहबजादे जो गोद में थे, वो अकेले थे मैदान में, वो अकेले मैदान में थे, चारों पंजतन में से आसमान की तरफ जा चुके थे, छोटे साहबजादे आशुरुद्दीन अकेले खड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं मेरे नाना का नवासा हूँ, मैं अहले बैत में से हूँ, हाय ये मुसलमान वो थे जो जानते थे लेकिन पलट चुके थे, हराम माल उनकी शिकमों में था, अरे वो ईसाई बेहतर थे जो वापिस चले गए, ये मुसलमान मौला कहते रहे क्या तुम नहीं जानते कि मैं पंजतन में से हूँ, लेकिन ये खून के प्यासे थे, अल्लाह ने इनके दिलों पर लानत कर दी थी, इनको सूअर और बंदर से बदतर इनकी रूहें कर दी थी कि मौला को कत्ल किए बगैर चैन ना आया।
बहुत ठीक है ना।